समागत देवियों और सज्जनों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गीता प्रवचन के लिए यहां आने का अवसर लगा। इसके लिए संगीत कला मंदिर के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि रमन लाल जी बिनानी ने बताया, हम लोगों ने वनवासी क्षेत्र में बस्तर जिले के एक विराट सेवा कार्य हाथ में लिया है। वह क्षेत्र अबूझमाड़ के नाम से जाना जाता है। नाम ही अबूझमाड़ है। 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, अबूझ का मतलब साफ है, जिसको बूझा न गया हो। माड़ पहाड़ियों को कहते हैं, तो अबूझमाड़ वह पहाड़ी इलाका है जो बूझा नहीं गया है। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि वह किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, न तो मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में दिखाया गया है और न वन विभाग के अंतर्गत वह क्षेत्र है। घने जंगल है और वहां पर कुछ अराष्ट्रीय गतिविधियां भी चल रही हैं, इसलिए वहां हम लोगों ने यह कार्य शुरू किया। कठिनाई इस बात की होती है कि हमारे अपने हिंदू कहलाने वाले लोग ही इसके विरोधक बन जाते हैं, वे ही विरोध करते हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, जो मिनिस्टर रह चुके बहुत वर्षों तक कांग्रेस में, मध्य प्रदेश शासन में, अभी वे एक निगम के अध्यक्ष हैं, आदिवासी हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने हमारे संयोजक से यह कहा कि आप लोग तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोग धर्म परिवर्तन यदि करेंगे आदिवासियों का, तो किसमें करेंगे। हमने संयोजक से कहा, अब आप तो नहीं कह पाए, पर मैं अगर होता तो मैं पूछता कि अच्छा महाशय जी, यदि आपको हमने कन्वर्ट किया तो अभी क्या है और कन्वर्शन के बाद क्या बनेंगे। यह धारणा, ऐसी धारणाओं के बीच हमें काम करना पड़ रहा है। दूसरी शक्तियां तो हैं ही, विरोध में कार्य कर ही रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रामकृष्ण मिशन के वहां आ जाने से उनकी गतिविधियों को एक प्रकार से रोक मिल रही है, और वह तो मिल ही रही है। 18 महीने का काम और इतना व्यापक हो जाएगा 18 महीने में, हमने भी कल्पना नहीं की थी। पर हमारे सभी साथी लगे हुए हैं। कल यहां पर मैं आया मेल से, तो परसों भागते हुए वहां से निकला ताकि समय पर मुझे मेल गाड़ी रायपुर में मिल जाए। तो जो हो, यह कार्य है, चल रहा है प्रभु की कृपा से। हम यही चाहते हैं कि अराष्ट्रीय जो तत्व हैं वे मुखर न हो, उनका सामना किया जाए और हमारी एक राष्ट्र के रूप में एक अस्मिता है, उस अस्मिता को कहीं पर चोट न पहुंचे। ये वनवासी हैं और केवल अनवनवासी ही नहीं, जिनको हम एबोरिजिनल्स कहते हैं, ऐसे वे हैं। तो हमें संतोष हो रहा है, जो गति हो रही है हमारे कार्यों की, हम पूरी तरह से उससे संतुष्ट हैं। कार्य चल रहा है। तो अभी रमन लाल जी ने जो कहा भूमिका में, उसी के आधार पर कुछ बातें मैंने कही यह बताने के लिए कि हमारे अपने कहलाने वाले लोग ही ऐसे कार्य में बाधक होते हैं। मानो अब एक शासन के एक विभाग का चेयरमैन अगर ऐसी बात कहे कि हम लोग कन्वर्शन कर रहे हैं, हास्यास्पद बात है और दुख की भी बात है। ईसाई मिशनरी कन्वर्शन कर रही है यह बात तो समझ में आती है, पर हम लोग कन्वर्शन कर रहे हैं, हम जो उनको बता रहे हैं कि वे क्या हैं, हम उनके ही धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं जो उनका अपना है, तो हम कन्वर्शन करें। तो यह उनकी बुद्धि, सोचने की शैली, ऐसा भी सोच हो सकता है इसकी कल्पना हमें नहीं थी, तो वह कल्पना भी हो रही है। जो हो, प्रभु ही इसमें यश देंगे, जैसी उनकी मर्जी होगी, हम लोग तो भिड़े ही हुए हैं। आइए इस संक्षिप्त भूमिका के साथ जो 3 दिन का समय उपलब्ध है उसमें 12वें अध्याय के सार पर थोड़ा सा चिंतन करें। आप लोग तो स्वाध्यायी हैं, सत्संगी हैं, इसलिए मुझे बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। फिर कई बातें ऐसी हैं जो आप सबकी जानी हुई हैं, समझी हुई हैं, परंतु फिर भी आप लोग आकर के मनोयोग पूर्वक इसे सुनते हैं, इससे सुख मिलता है कि आपकी धर्म के प्रति निष्ठा, और वही निष्ठा आप पहले से जो जानते हैं उसे पुनः सुनने के लिए प्रवृत्त आपको करती है। हम यही मान करके चलते हैं कि व्याख्या भी आपकी जानी हुई है, पर जो बातें हमारे हृदय के करीब हैं उनको बार बार दोहराने से रस ही मिलता है, भावना हमारी और तीव्र होती है। यही सोच करके हम इसके चिंतन में अग्रसर हो रहे हैं। जैसा कि अभी रमन लाल जी ने कहा, 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। गीता का प्रत्येक अध्याय कोई न कोई योग से संबंधित है। यहां पर भक्ति योग कहा, इसका मतलब यह नहीं कि अन्य अध्यायों में भक्ति की चर्चा ना हो। बहुत से अध्यायों में, या यो कह लें कि प्रायः सभी अध्यायों में हमें सभी की चर्चा मिलती है, भक्ति की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, कर्म की चर्चा, पर किसी किसी अध्याय में किसी एक विशेष विषय को लेकर के चर्चा की जाती है और बाकी अन्य विषय उसके आनुषंगिक बन जाते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि 12वें अध्याय में विशेष करके भक्ति की चर्चा हुई है, और उसके साथ ही साथ आनुषंगिक रूप से कर्म की भी चर्चा है, योग की भी चर्चा है और ज्ञान की भी चर्चा है। यह आप सर्वत्र देखेंगे गीता के अध्यायों में। इसका नाम दिया है भक्ति योग, और आप गीता की प्रणाली से परिचित हैं। अध्याय के अंत में कोई सूत्र दे दिया जाता है नए अध्याय का प्रारंभ करने के लिए, और उस पिछले अध्याय के सूत्र को पकड़ करके नया अध्याय प्रारंभ किया जाता है, जिससे कि बात का खुलासा पूरी तरह से हो सके। मैंने अपने पहले गीता प्रवचन में यहां पर कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता का मतलब है भगवान की गाई हुई, या भगवान की गाई हुई बात है। हम लोग कहते हैं कि साक्षात ईश्वर की वाणी है। हमने इतना ही कहा था कि भगवान की गाई हुई का मतलब हम यह न ले लें, हूबहू भगवान ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह तो छंदोबद्ध है, श्लोकबद्ध है, और हम यूं कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान कृष्ण भी कवि थे, अर्जुन भी कवि था, धृतराष्ट्र भी कवि थे, संजय भी कवि था, और जब भी बोलते थे तो श्लोकबद्ध भाषा में बोलते थे, यह कल्पना बहुत दूर की हो जाती है। तो सामान्यतः हम क्या मतलब लेते हैं भगवान की वाणी का? जैसा कि हम पढ़ते हैं गीता के महात्म श्लोकों में, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्य महाभारतम। प्रतिबोधित करने के लिए पार्थ को भगवान ने जो कुछ कहा वह पकड़ करके वेद व्यास ने उससे सुंदर इस ग्रंथ का निर्माण कर लिया। मतलब यह है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन जो वे बातचीत में संलग्न हैं, उन्होंने जो वार्तालाप किया होगा, जो भी भाषा उस समय प्रचलित रही होगी भारत में, सामान्य बोलचाल की भाषा, उसमें उन्होंने बात की होगी, और उस बात को पकड़ करके पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना, उसे लेकर के पुराण मुनि वेद व्यास ने ग्रंथ के रूप में, गीता के रूप में लिपिबद्ध कर लिया, ग्रथित कर लिया, रचित कर लिया। तो भगवान की वाणी है, इस अर्थ में भगवान की वाणी है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ठीक ये ही शब्द भगवान के मुख से निकले थे, ये श्लोक निकले थे, जैसा मैंने कहा यह दूर की कल्पना है, पर यह हम कह सकते हैं कि इसका जो सार है वह भगवान के मुख से निकला है। और हो सकता है जब भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, उस वार्तालाप में ये कई हूभू शब्द भी आए हों, यह भी बिल्कुल संभव है। तो जो हो, हम तो इस गीता को अपने जीवन में लाभकारी मान करके इसका चिंतन कर रहे हैं। 12वें अध्याय में हमने कहा भक्तियों का प्रतिपादन है, और 11वें में अंत अंत में आप देखेंगे भक्ति के कुछ सूत्र रख दिए गए, और वहां से वह चर्चा शुरू होती है 12वें अध्याय की। 11वें अध्याय को आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन देख नहीं पा रहा था, जब भगवान ने कहा कि तू मेरा यह रूप देख, फाड़ फाड़ करके अर्जुन ने आंखें देखने की चेष्टा की पर रूप दिखा नहीं, तब कहा कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं अर्जुन, इन आंखों से तू मेरे इस दिव्य रूप को नहीं देख सकता, विराट रूप को नहीं देख सकता। तब हम पढ़ते हैं कि भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए, अर्जुन ने दिव्य चक्षु से भगवान के विराट रूप को देखा, घबरा गया, भय को प्राप्त हुआ, और उसके बाद वह कहता है कि आप उस चतुर्भुज रूप में ही मुझे दर्शन दीजिए जो मेरे भय को दूर करेगा। अदृष्ट पूर्वम भृषितोष्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यतितम मनो में तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए, मैं भय से प्रव्यथित मन का हो गया हूं, मेरा मन व्यथित हो रहा है, प्रकर्ष रूप से व्यथित हो रहा है आपके इस रूप को देख करके। अदृष्ट पूर्वम, यह रूप आपका अदृष्ट पूर्व है, मैंने कभी आपका यह रूप नहीं देखा। तदेव, इसलिए हे देव, आप अपने उस रूप को दिखाइए। किस रूप को? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ति, आप अपने उसी रूप में आइए, तथैव आपका वही रूप मेरे सामने आए। कौन सा रूप? जिसमें आप किरीट धारण किए हुए हैं, मुकुट धारण किए हुए हैं, हाथ में गदा और चक्र लिए हुए हैं, मैं आपके उसी रूप को देखना चाहता हूं। और अर्जुन ने यहां पर विशेषता डाल ही दी है यह कहकर के चतुर्भुजेन, आपके चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूं। अब आप जानते हैं भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में भी विराजते थे, द्वारका में विशेष करके चतुर्भुज रूप में उनका वर्णन आया है भागवत में भी, और महाभारत में भी यह प्रकरण आता है। और आप यह पढ़ते हैं कि पौंड्रक नाम का था राजा, जो पौंड्रक वासुदेव अपने को कहता था नकली, तो उसने भी श्री कृष्ण का विरोध करने के लिए दो भुजाएं लगा ली थी नकली, और कहता था चतुर्भुज रूप में ही अगर कृष्ण को भजना है तो मैं भी क्या चतुर्भुज मैं नहीं हूं। यह उल्लेख वहां पर प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में भी विराजते थे, यह यहां पर तथैव, आप उसी चतुर्भुज रूप में आ जाइए। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण के कई बार दर्शन किए हैं। और फिर तब क्या करते हैं, जब अर्जुन ने कहा तब संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र से बता रहे हैं, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास भूय। जब वासुदेव भगवान ने पहले तो समझाने की चेष्टा की और फिर अर्जुन ने जब ऐसा कहा तो फिर उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, स्वकम रूपम, उनका अपना रूप जो चतुर्भुज रूप था उसको दिखलाया। आश्वासयामास च भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। और फिर उसके बाद आश्वासयामास, अर्जुन को आश्वासन दिया, भयभीत अर्जुन को धीरज दिया, और फिर क्या करते हैं सौम्य वपुर महात्मा, फिर वे महात्मा कृष्ण सौम्य वपु धारण करते हैं। क्या मतलब हुआ, अभी कहा कि उन्होंने अपना रूप धारण करके अर्जुन को दर्शन दिया, अर्जुन ने प्रार्थना की थी आप चतुर्भुज रूप में आइए, तो अपना रूप धारण करके दर्शन दिया, तो कौन सा रूप धारण किया, भगवान के तो ये दोनों रूप हैं, प्रसिद्ध हैं, दो हस्त वाले दो भुजा वाला रूप और चतुर्भुज रूप भी है। तो यहां पर यह शंका होती है कि भगवान ने अपने किस रूप में दर्शन दिया, स्वकम रूपम, अपने रूप में दर्शन दिया। तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि अपना रूप तो उनका दो हाथों का भी हो सकता है, पर उसके बाद कहते हैं पुनः भूत्वा सौम्य वपुः, फिर से वे सौम्य वपु वाले हो गए। इसका मतलब कि दो बार उन्होंने रूप परिवर्तन किया, विराट रूप में दिख रहे हैं, अर्जुन भयभीत है, प्रार्थना करता है, और प्रार्थना सुनकर के वे स्वकम रूपम में आ जाते हैं, अपने रूप में दिखाई देते हैं, और अपने रूप में दिखाई देकर के फिर से सौम्य रूप को धारण करते हैं। यह यहां पर ऐसा वर्णन है, इससे स्पष्ट है कि वह जो दिखाई दे रहे थे विराट रूप में चतुर्भुज रूप में आए, जिस रूप में देखने की इच्छा अर्जुन ने की थी, और फिर उसके बाद वे सौम्य वपु हो जाते हैं, सौम्य रूप धारण करते हैं, द्विभुज रूप हो जाते हैं, मनुष्य रूप धारण कर लेते हैं। और वही बात यहां पर 91वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम तव सौम्यम जनार्दन, हे जनार्दन आपके सौम्य मानुषी रूप को मैंने देखा। तो सौम्य मानुषी रूप, इसका मतलब द्विभुज रूप, तो अर्जुन द्विभुज रूप को देखता है। इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिम गतः, आपके इस रूप को देख करके मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं, यह अर्जुन कह रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ, फिर से उसको दोहरा दें, भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन डर गया, प्रार्थना करता है आप चतुर्भुज रूप में आइए, प्रभु चतुर्भुज रूप में आते हैं, और फिर उसके बाद सौम्य मानुषी रूप धारण करते हैं जो द्विभुज रूप है। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से, सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्ममो देवा अप्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, तूने यह जो रूप देखा है चतुर्भुज रूप, यह अत्यंत दुर्दर्श है, एक तो दुर्दर्श और फिर कहा कि सुदूरदर्श, एक तो दुर्दर्श ही माने बहुत कठिन से दिखने वाला, और फिर सुदूरदर्श बहुत ही और भी बहुत कठिनाई से दिखने वाला, यह चतुर्भुज रूप। अब यहां पर यह बात समझ में नहीं आती कि सामान्य मनुष्य भी तो कृष्ण भगवान को चतुर्भुज रूप में देख रहे हैं, जब पौंड्रक देख सकता है और वह नकली दो भुजाएं लगा करके घूम सकता है, तब फिर यहां पर जो सुदूरदर्शम कहा कि क्या चतुर्भुज रूप के लिए है, अथवा द्विभुज रूप तो उनका प्रसिद्ध ही है, द्विभुज रूप में तो सभी ने देखा था, वहां पर गोप बालकों ने देखा था, गोपियों ने देखा था, जिसने भी कृष्ण को देखा वह द्विभुज रूप में देखता है, तो वह तो बहुत सहज लभ्य है। चतुर्भुज रूप कुछ कुछ लोग देखते हैं, और यह विराट रूप यह तो केवल अर्जुन देखने में समर्थ हुआ है। और अर्जुन के साथ साथ हम यह कह सकते हैं कि संजय भी भाग्यवान है, जो संजय भी देख रहा है, क्योंकि संजय न देखता होता तो धृतराष्ट्र से वर्णन कैसे कर सकता था। तो अर्जुन तो देखता ही है इस विराट रूप को, जिसके संबंध में भगवान ने कहा कि तू इन आंखों से देख नहीं सकता, इसके लिए दिव्य चक्षु तुझे देता हूं। पर संजय को दिव्य चक्षु की आवश्यकता भगवान की ओर से नहीं हुई, वह दिव्य चक्षु तो मिला था, आप पढ़ते हैं, वेद व्यास ने प्रदान किया था। संजय से कहा था कि मैं दिव्य चक्षु देता हूं, तुम यही बैठ करके सब कुछ देख सकोगे। तो यह संजय की भक्ति का प्रमाण है कि संजय भी भक्तिमान, जैसे अर्जुन भक्तिमान उसी प्रकार संजय भी भक्तिमान। अर्जुन ने जो कुछ देखा संजय ने भी वही कुछ देखा, और इसीलिए संजय धृतराष्ट्र के सामने वर्णन करने में समर्थ होता है। तो अब यहां पर भगवान कहते हैं सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टमानस्यन मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। देवता भी इस रूप को देखने के लिए तरसते हैं। तो कौन सा रूप? तो यही मान सकते हैं यह चतुर्भुज रूप ही होगा। द्विभुज रूप तो सहज लभ्य, और यह जो विराट है, विराट रूप तो और किसी के सामने भगवान ने दिखाया नहीं, अर्जुन के सामने ही दिखाया। तो ये जो हरदम देवता देखने की इच्छा करते हैं, किस रूप को? भगवान के इस चतुर्भुज रूप को ही देखने की इच्छा करते होंगे, यही यहां से तात्पर्य ध्वनित होता है। और कहते हैं नाहम वेदैन न तपसा न दाने न चैज्जया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टमान से माम यथा। तो तूने जिस प्रकार से देखा वह दान इत्यादि से नहीं देखा जा सकता, तो फिर किससे देखा जा सकता है? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। यह सूत्र है जिससे 12वां अध्याय शुरू होता है। भक्त्या त्वनन्यया, परंतु अनन्य भक्ति से इस प्रकार से मुझे देखना संभव है अर्जुन। कैसा? ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम, कि ज्ञातुम माने जानना, बुद्धि से जानना, हम बुद्धि से जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। द्रष्टुम मन और इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं कि ठीक है, एक रूप है, भगवान का एक रूप आया, मान लीजिए चतुर्भुज रूप ही है, तो चतुर्भुज रूप ही है तो वह कैसे दिखेगा? वह तो भीतर ही दिखेगा मन के द्वारा, और जो इंद्रियां भीतर गई हैं उन्हीं के माध्यम से बोध होगा। चतुर्भुज रूप एक रूप है, एक सीमा के भीतर में परिच्छिन्न रूप है, उसको तो इंद्रियां देखेंगी, जब भीतर की ओर जाएंगी तो अनुभव करेंगी, देखेंगी। जहां भी रूप का दर्शन है वहां पर मन और इंद्रियां दोनों हैं, दोनों के दोनों चलते हैं। जहां पर रूप नहीं है वहां पर मन की गति नहीं है। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं जब ब्रह्म का वर्णन आता है, आत्मा का वर्णन आता है, अवांग मनस गोचर कह देते हैं, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मन, वहां पर मन नहीं जाता, मन नहीं जाता इसलिए वाणी भी नहीं जाती, ये सब लौट आते हैं, प्रत्यावर्तन हो जाता है, मन उसको बिना पाए वहां से लौट आता है। तो जब मन लौट आता है तो वाणी भी लौट आती है, क्योंकि वाणी मन का अनुवर्तन करती है, जहां मन जाता है उसके पीछे वाणी चलती है, मन जो अनुभव करता है वाणी उसे शब्दबद्ध करती है और हमारे समक्ष शब्द के रूप में प्रकट करती है। पर मन ही जहां न जा पाए वहां पर वाणी कैसे जाएगी? इसीलिए कहा गया कि अवांग मनस गोचर है, वह तत्व या वहां से वाणी लौट आती है मन के साथ, यह बातें कही गई। पर जो चतुर्भुज रूप है वह तो सीमाबद्ध रूप है, वहां पर तो चार भुजाएं प्रभु की दिख रही है, एक हाथ में गदा है, दूसरे में पद्म है, तीसरे में चक्र है, चौथा वे आशीर्वाद प्रदान कर दे रहे हैं, तो यह तो हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? तो कहा गया कि मन और इंद्रियों के माध्यम से हम देखते हैं, बुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तत्वेन प्रवेष्टुम, तत्व में मानो तत्व के द्वारा प्रविष्ट, मानो आत्मभाव उस तत्व के साथ, ये मैं ही है या मैं ही हूं या उनके साथ तादात्म, यह वहां पर स्थापित होता है। तो यहां पर यही कहा गया कि अर्जुन यह जो तूने देखा यह दान इत्यादि ये सामान्य साधनाओं के द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए मनुष्य कितना भी तप कर ले तप उसके माध्यम से भी नहीं। ना हम वेदय न तपसा न दाने न च इज्जया, कितना भी यज्ञ करे कितना भी वेदों का अध्ययन करे पर उसके माध्यम से मैं इस प्रकार दर्शनीय नहीं हूं तो कैसे दिखते हैं प्रभु। भक्त्या त्वनन्या, अनन्य भक्ति से ऐसा मैं दर्शनीय हो सकता हूं अनन्य भक्ति के द्वारा। इसलिए तू क्या कर, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। देखो अर्जुन कौन मुझे पाता है, मत कर्म कृन मेरे लिए जो कर्म करने वाला है, मत परमो जो मुझे ही परम मानता है और किसी को परम नहीं मानता, उसकी दृष्टि में ईश्वर ही परम है, मत भक्तः मेरा भक्त है। तीन बातें यहां पर कही गई, मत कर्म कृत मेरे लिए कर्म करने वाला जो है उसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के केंद्र में प्रभु ही होते हैं, न तो उसका अहंकार होता है न तो अन्य कोई व्यक्ति होता है, उसकी समस्त क्रियाओं के केंद्र में प्रभु ही होते हैं। तो मत कर्म कृत वह मेरे लिए कर्म करने वाला जो है, मत परम जो मुझे ही परम मानता है, मत भक्त जो मेरा भक्त है मेरा ही भजन करता है। भजन करना हम देखेंगे आगे के अध्याय में चर्चा करते हुए, वह मेरा भक्त है मेरा भजन करता है इसका मतलब कि वह मुझे ही चाहता है। भजनम, भजनम यह जो भज धातु है कई अर्थ हैं उसके आप जानते हैं। एक तो यह भी अर्थ होता है कि विभाजन करना, भज माने विभक्ति, आप कहते हैं भक्ति विभक्ति, विभक्ति कहने से विभाजन हो गया, जैसे दो विभाग, यह विभाग शब्द भी भज धातु से बना है, मानो विभाजन हम भाग कर देते हैं माने दो भाग हो गए। तो भज धातु का अर्थ विभाजन भी है, भाग करना भी है, मानो दो भाग हो गए, एक संसार हो गया दूसरा ईश्वर हो गया। तो भक्त क्या कहता है, मैं ईश्वर की तरफ रहूंगा। यह जो है इसको कहा गया है भक्त जो ईश्वर को चुने संसार को न चुने, इस विभाजन में जो ईश्वर को पसंद करता है और कहता है कि मैं तो ईश्वर को चुनता हूं, ऐसा व्यक्ति भक्त है। तो मत भक्त जो मुझे चुनता है, संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, ये दो माने यहां पर तीन चीजें करनी है, दो चीजें छोड़ने की त्याज्य, एक तो संग आसक्ति इसको छोड़े, निर्वैर सर्वभूतेषु और वैर को छोड़े। वैर जलाता है या द्वेष हमको सतत जलाता है, यह आप जानते हैं कि बैर कैसे जलाता है, जो बैर भाव रखता है उसको भी जलाता है, जिसके प्रति बैर भाव रखा जाता है वह भी जलता है। तो निर्वैर सर्वभूतेषु तो जो वैर भाव रखता है जिसके भीतर में वैर भाव है द्वेष है वह ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता, उसके जीवन में तो वैरी ही आता है, उठेगा तो वैरी ही दिखाई देता है। हम सुबह उठेंगे उसी का चिंतन करेंगे, दिन भर उसी का चिंतन होता है, जिसके प्रति वैर भाव उसका चिंतन हमारे मन में बारंबार और वह चिंतन हमें क्षोभ उत्पन्न करता है। तो ऐसा व्यक्ति भक्त कैसे हो सकता है भगवान का। तो यहां पर कहते हैं कि देखो ये तो तीन बातें करनी मैंने कही, मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः, और छोड़ने के लिए कहा आसक्ति छोड़ो। अगर बाहर आसक्ति है तो मुझमें आसक्ति कैसे होगी, यह भगवान का कथन है। अगर तुम बैर करते हो किसी से तो मेरा चिंतन फिर कैसे होगा, जिसके प्रति बैर करते हो उसका चिंतन करोगे। तो बैर छोड़ो आसक्ति छोड़ो, ऐसा जो व्यक्ति है यह स मामेति पांडव वह मुझे प्राप्त करता है। यहां पर 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अर्जुन इस पर प्रश्न करता है, भगवान कृष्ण बड़े विलक्षण है उनको बातें खुलासा करनी है तो अध्याय के अंत अंत में एक सूत्र दे देते हैं और उसी सूत्र को पकड़ करके वह मानो चला अर्जुन चला और प्रश्न करता है। जैसे मेरे एक मित्र अभी भी हैं आईएएस में हैं, तो बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट जैसे कहा गया, तो इसमें बहुत कुशल है इंटरव्यू देने में। तो हमने कहा कि तुम इंटरव्यू देते हो तो तुमको इंटरव्यू में इतने नंबर मिल जाते हैं हर जगह, तुम इंटरव्यू में कहा, इंटरव्यू में एक कुशलता है। क्या कुशलता है, जैसे वो एक प्रश्न करते हैं तो प्रश्न करते करते उसके उत्तर में मैं कुछ बातें जो बहुत अच्छी तरह जानता हूं उनका उल्लेख कर देता हूं, ला देता हूं, एक कुछ मैंने हिंट कर दिया, तो उसी हिंट को पकड़ करके फिर मुझसे पूछते हैं कि अच्छा इसके बारे में क्या जानते हो, तो मैं फिर पूरा बता देता हूं, फिर हिंट कर देता हूं। तो जो हिंट करता हूं, सामान्य रूप से जो सामने बैठे हुए प्रश्न कर रहे हैं उनके मन में बहुत से प्रश्न तो नहीं होते, वह तो इंटरव्यू जो दे रहा है, साक्षात्कार जो दे रहा है, वह जैसे उत्तर देता है तो उसी उत्तर में वे कुछ देखते हैं, खोजते हैं और पकड़ करके पूछते हैं। ये सामान्य है। आप भी अगर किसी से इंटरव्यू लें तो आपके मन में भले बहुत कुछ पूछने का हो पर पूछते समय सब भूल जाते हैं, जो सामने कह रहा है उसी की बात पकड़ करके आप फिर से पूछते हैं। तो कुशल इंटरव्यू देने वाला वह व्यक्ति जो जो जानता है उसको सामने रख दे, तो भगवान कृष्ण भी बड़े कुशल हैं, जो उनको बताना है, जो समझाना है, तो सूत्र रूप में रख देते हैं।